नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड की सुरक्षा पर। हम सब रोज इसे यूज करते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल।
लेकिन हमें कुछ ऐसे लेख मिले हैं जो बताते हैं कि ये शायद उतना सेफ नहीं है जितना हम सोचते हैं।
सही कह रहे हैं।
तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओटीपी कैसे खतरे में पड़ सकता है और हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए।
बिल्कुल, अक्सर हमें लगता है कि भाई ओटीपी आ गया तो मतलब सब सुरक्षित है।
हाँ, एक सेफ्टी की फीलिंग आती है।
हाँ, लेकिन इन स्रोतों ने जो तरीके बताए गए ना, वो दिखाते हैं कि ये जो धोखेबाज है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं,
अच्छा,
बल्कि हमारे भरोसे का, हमारी आम आदतों का भी फायदा उठाते हैं। और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोडिंग हैकिंग वाली बात नहीं है?
हाँ,
जैसे एक स्रोत कह रहा था कि ओटीपी सिर्फ मैसेज में नहीं आता, कॉल पर भी आ सकता है या स्क्रीन पर दिख सकता है।
हाँ बिल्कुल।
तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ फोन को लॉक रखना काफी नहीं है?
देखिए, वो तो पहला लेवल है ना। अगर फोन किसी और के हाथ लग गया तो स्क्रीन पर पॉपअप होने वाला ओटीपी तो वो देख ही सकता है। पर इससे भी शातिर तरकीबें हैं जो हमारे फोन के जो नॉर्मल फीचर्स है ना,
जैसे
उनका इस्तेमाल करती हैं।
जैसे
कॉल फॉरवर्डिंग।
कॉल फॉरवर्डिंग? अरे वो कैसे, ओटीपी चुराने में? वो तो सिर्फ कॉल दूसरी जगह भेजने के लिए होता है ना।
हाँ, होता तो उसी के लिए है, लेकिन जैसा इन लेखों में बताया गया है, धोखेबाज कोई बहाना बनाकर,
हाँ
जैसे मान लीजिए कस्टमर केयर से बोल रहे हैं या बैंक से। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है।
हाँ,
और वो आपसे, आपके ही फोन से एक कोड डायल करवा सकते हैं,
हमारे फोन से।
आपके ही फोन से। और वो कोड असल में क्या करता है, वो आपकी सारी इनकमिंग कॉल्स को, जिसमें ओटीपी वाली कॉल्स भी हो सकती हैं।
बाप रे, मतलब हम अनजाने में खुद ही एक तरह से चाबी दे रहे हैं चोर को।
बिल्कुल।
और ऐसा ही कुछ वो कॉल मर्जिंग और वॉइस मेल के साथ भी होता है जैसा श्रोत बता रहे हैं।
हाँ, कॉल मर्जिंग में क्या होता है, वो आपकी कॉल को अपनी कॉल के साथ जोड़ सकते हैं।
अच्छा।
हाँ, और फिर वो बातचीत सुन सकते हैं। हो सकता है उसमें ओटीपी भी बताया जा रहा हो। और वॉइस मेल का तो ऐसा है कि अगर आपका फोन बिजी है, और कई बार वो जानबूझकर दूसरे नंबर से कॉल करके आपका फोन बिजी कर देते हैं।
ओ, ये भी करते हैं?
हाँ, ताकि ओटीपी वॉइस मेल में चला जाए जिसे वो बाद में हैक करके सुन सके। इसीलिए कई स्रोत कहते हैं कि भाई वॉइस मेल बंद ही रखो तो अच्छा है।
समझ गया, ये तो हुई फोन के फीचर्स की बात, लेकिन आजकल वो ई सिम का भी काफी जिक्र होता है। क्या वो ज्यादा सुरक्षित है या उसमें भी रिस्क है?
ई सिम देखिए एक और मोर्चा खोल देता है धोखेबाजों के लिए।
अच्छा,
कैसे? वो आपके नाम पर डुप्लीकेट ई सिम एक्टिवेट करवा सकते हैं, किसी तरह आपकी जानकारी हासिल करके। और एक बार उनके पास ई सिम का कंट्रोल आ गया तो मतलब आपके नंबर का पूरा कंट्रोल उनके पास, फिर ओटीपी तो सीधा उन्हीं को मिलेगा।
अरे यार।
हाँ, तो इसलिए कोई भी ई सिम एक्टिवेशन रिक्वेस्ट आए या कोई कोड मांगे तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
ठीक है, तो मतलब फोन के फीचर्स हो गए, सिम हो गया,
बिल्कुल
दोनों निशाने पर हैं।
बिल्कुल।
अब उन तरीकों पर आते हैं जहां शायद हम खुद गलती कर बैठते हैं, जैसे वो स्क्रीन शेयरिंग वाली बात।
बिल्कुल, ये तो आजकल बहुत ही आम हो गया।
हाँ, बहुत कॉमन है।
क्विक सपोर्ट है, एनी डेस्क है, ऐसे कई रिमोट एक्सेस ऐप हैं। वो आपको कोई बहाना बनाकर ये ऐप इंस्टॉल करवा देंगे
मदद के नाम पर शायद।
हाँ, मदद के नाम पर, या फिर जूम या गूगल मीट कॉल पर कहेंगे कि स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और जैसे ही आपने स्क्रीन शेयर की,
वो ओटीपी देख लेंगे।
हाँ, बस वो आपके फोन पर आने वाला ओटीपी आराम से देख लेते हैं।
और ये QR कोड, वो तो आजकल हर जगह हैं, पेमेंट्स के लिए, वाईफाई के लिए, उनमें क्या खतरा है?
खतरा है अनजान या कह सकते हैं अविश्वसनीय QR कोड को स्कैन करने में।
अच्छा,
जैसा कि एक लेख बताता है, कुछ QR कोड ऐसे होते हैं जिन्हें स्कैन करने पर आपके फोन में कोई मैलवेयर, मतलब कोई वायरस वाला ऐप डाउनलोड हो सकता है।
ओ,
और वो ऐप फिर बैकग्राउंड में आपके ओटीपी समेत आपकी सारी जानकारी चुरा सकता है।
ये तो बड़ा डरावना है कि जो चीजें हमारी सुविधा के लिए बनी है वही हथियार बन जाती है उनके हाथ में।
हाँ बिल्कुल।
अच्छा, और क्या सिर्फ फोन पर आने वाले ओटीपी ही खतरे में है या ईमेल वाले भी?
नहीं नहीं ईमेल पर आने वाले ओटीपी भी उतने ही, बल्कि कभी कभी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कई बैंक और दूसरी सर्विसेज ईमेल पर भी ओटीपी भेजती हैं, रिकवरी के लिए या किसी ट्रांजैक्शन के लिए।
हाँ, भेजते हैं।
तो अगर आपके ईमेल का पासवर्ड कमजोर है या कहीं लीक हो गया है या किसी के हाथ लग गया, तो वो ईमेल वाला ओटीपी भी गया, वो भी सेफ नहीं है।
सही बात है।
इसलिए ईमेल अकाउंट की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी फोन की।
तो कुल मिलाकर अगर देखें इन सारे स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ओटीपी की सुरक्षा सिर्फ उस 6 डिजिट के मैसेज तक ही सीमित नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
कॉल से, वॉइस मेल से, स्क्रीन शेयरिंग से, QR कोड स्कैन करने से, eSIM से, यहाँ तक कि ईमेल से भी, मतलब हर जगह सेंध लग सकती है।
एकदम सही कहा। खतरा मतलब टेक्नोलॉजी वाला भी है और इंसानी भरोसे का गलत फायदा उठाने वाला भी है।
हाँ, दोनों तरफ से है।
और इसीलिए इसका जो समाधान है वो भी मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक चीज करने से नहीं होगा।
तो क्या करना चाहिए, मतलब मुख्य बातें क्या है ध्यान रखने वाली?
देखिए, सबसे पहली बात तो फोन को फिजिकली सुरक्षित रखना, लॉक वगैरह। दूसरी, अनजान कॉल्स, लिंक्स, अटैचमेंट्स, QR कोड्स, इन सब से बचना।
शक करना जरूरी है।
हाँ, शक करना बहुत जरूरी है। तीसरी, अपने फोन की सेटिंग्स, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट तो नहीं है, वॉइस मेल ऑन तो नहीं है, ये सब चेक करते रहना। और चौथी, मजबूत और अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करना, खासकर ईमेल के लिए। और सबसे जरूरी शायद जागरूकता।
जागरूकता और सतर्कता।
हाँ, किसी भी अनचाही रिक्वेस्ट पर, चाहे वो कॉल पर हो, मैसेज पर हो, ईमेल पर हो, उसे वेरीफाई करना, डबल चेक करना। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, जैसा कि ये स्रोत बार बार कह रहे हैं।
बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
हाँ,
कि जिस तेजी से ये टेक्नोलॉजी और धोखाधड़ी के तरीके बदल रहे हैं, क्या ये ओटीपी वाला सिस्टम हमेशा इतना कारगर रहेगा?
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
या हमें भविष्य में सुरक्षा के लिए कुछ पूरी तरह से नए तरीकों के बारे में, नई आदतों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल सोचने वाली बात।